राम रावण युद्ध वास्तव में क्या है और कौन सा वह एक ही रास्ता है जिसमें जिससे हमारा उद्धार होता है, तो अब हम देखेंगे एक ही रास्ता अमरावती से प्रस्तुत करने जा रहे हैं बी के भाई बहने, एक ही रास्ता।
यह सूक्ष्म लोक कितना न्यारा और प्यारा है,
जहाँ पवित्रता और प्रकाश ही प्रकाश है।
निजानंद रूपम शिवोऽहम् शिवोऽहम्, ज्ञान स्वरूपम शिवोऽहम् शिवोऽहम्, प्रकाश स्वरूपम शिवोऽहम् शिवोऽहम्।
मैं सृष्टि का रचयिता परमात्मा शिव हूँ, मैं रूप में निराकार ज्योति स्वरूप हूँ, सर्व आत्माओं का पिता ईश्वर अल्लाह गॉड, एक ओंकार निराकार सबका मालिक एक भगवान शिव हूँ। मेरा अवतरण 5000 साल में सिर्फ कल्प के संगम युगे ब्रह्मातन में होता है। जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों सदृश नहीं बल्कि दिव्य और अलौकिक है। अब मैं पुनः सच्चा गीता ज्ञान देकर राजयोग सिखाता हूँ, दैवी सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा द्वारा करता हूँ। हे राजयोगी बच्चे, मैं तुम्हें फिर से स्मृति देकर देवता जैसा बनाने आया हूँ। श्री राम और श्री कृष्ण साकार में दिव्य गुणों से संपन्न संपूर्ण पवित्र होने के कारण मनुष्यों ने मेरा ही अवतार समझ लिया है। यह स्वर्ग में देवता थे, यह भगवान नहीं है। अतः आप दोनों इसी श्री कृष्ण और श्री राम की वेशभूषा में साकार लोक में अवतरित हो जाओ और यह मनुष्य की भूल सुधारने की सेवा करो, तो मैं तुम्हें स्वर्गीय राज्य और भाग्य दूंगा। जाओ वत्स, जाओ, निर्भय होकर सेवा करो। जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोके आंधी और तूफान।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
वाह, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मुझे धर्म स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम धर्म की स्थापना करो, हम अधर्म का विस्तार करेंगे। देखते हैं कौन बलवान है, कौन भगवान है। हम तो हैवानों के, शैतानों के, असुरी संप्रदायों के नट सम्राट है, क्योंकि हम ही उनके दिलों के सम्राट है।
महाराजा और रावण की
जय हो,
महाराजा रावण की
जय हो,
लंकेश की
जय हो,
लंकेश की
जय हो,
रावण राज
जिंदाबाद,
रावण राज
जिंदाबाद।
हमने अपने बलबूते पर, अपने बाहुबल पर सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया है। इस राज्य के हमें सर्वे सर्वा है, सबके भाग्य विधाता वरदाता रावण है। हम चाहे तो किसी को हंसा भी सकते हैं, चाहे तो रुला भी सकते हैं। रावण का अर्थ ही है रुलाने वाला। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मन से रोता नहीं होगा। बाहर से नहीं, लेकिन अंदर से जरूर रोता है। अंदर एक, बाहर दूसरा, ये हमारा ही एक रूप है। हम बहुरूपी है, कभी रावण तो कभी ब्राह्मण। भिक्षां देहि माई भिक्षां देहि। फिर भी हम आपको दो ऑप्शन देते हैं, बोलो क्या मंजूर है, सदा हंसना या सदा रोते ही रहना? क्यों सेनापति?
दयावंत करुणानिधि, सदा हम पर कृपा छत्र रखने वाले कृपाचार्य, आपकी छत्र छाया में निरंतर हम हंसते खेलते पलते रहे, यही वरदाता हमें वरदान मिले और आसुरी मौज में निरंतर खुशियां मनाते रहे, ऐसा भाव करिए।
वाह वाह, तथास्तु। मानना हो तो ऐसे जो वरदान और भाग्य जन्म जन्म तक चले। आसुरी आनंद को हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम पर कोई भी ग्रहचारी नहीं बैठ सकती, क्योंकि राहु केतु सहित सारे ग्रह हमसे संतुष्ट है, क्योंकि हम ही उनके इष्ट है, फिर वह हमें कष्ट कैसे देंगे? ये तो कर्म का हिसाब किताब है।
महाराजन, आप तो ज्योतिष विद्या निपुण और सर्व शास्त्रों में पारंगत, सर्व शास्त्र शिरोमणि, कर्मों की गहन गति को भी जानते हो। ज्ञानवान विद्वान पंडित और बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, इसी शान में आपका व्यक्तिमत्व कुछ अलग ही अस्तित्व रखता है। आपकी मान शान में चेहरे की चमक दमक में एक अनोखी अदा है।
हम सदा ही अपनी शान में और समान में रहते हैं, इसीलिए किसी की क्या मजाल जो हमें परेशान करे।
हाँ महाराज, जो सदा सोमान के सीट पर सेट रहते वे कभी अपसेट नहीं होते। आपकी झलक और फलक कुछ और ही है।
ये हुई ना बात, तुम तो रावण की मुखवंशावली का श्रृंगार हो, हमारे गले का हार हो। ये गले का हार आज हम तुम्हें भेंट करते हैं।
धन्यवाद महाराज, आज हम कृतार्थ हो गए। जिनके पास महाबली का हार है उनकी हार कभी हो ही नहीं सकती। क्यों पंडित जी?
बिल्कुल ठीक है आपकी वाणी। महाराज ने भगवान विष्णु को 24 बारी धरा पर अवतरित होने के लिए मजबूर किया, इसलिए शास्त्रों में 24 अवतारों का गायन है। उसमें भी मुख्य 10 अवतार है, कच्छ मच्छ वराह नरसिंह परशुराम बुद्ध राम कृष्ण और कलंकी।
और यही कलंकी अवतार सबको मुक्ति प्रदान करेगा, लेकिन हमें तो शिव का वरदान है, हमें कोई नहीं मार सकता। हम मृत्युंजय है, अमर है, सर्वशक्तिवान है, अजिंक्य है।
महाराजाधिराज, आज सुवर्ण जयंती के अवसर पर शांति स्थापना के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया है उसका उद्घाटन करें।
उससे पहले नृत्यांगना का नृत्य पेश किया जाए।
Thank you.
वेद अरे।
आइए महाराज उद्घाटन करें।
सम्मेलन के प्रथम सत्र में हम अपने राज्य का इतिहास रचने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अर्थात महारथियों की, महावीरों की वीर गाथा सुनना चाहेंगे।
जो आज्ञा महाराज। सर्वप्रथम बबुलेना कामजो कामांड महारथी की शूर गाथा सुनाएंगे आदरणीय बबुलेनाथ।
महाराज जब कामांड का आक्रमण होता है तो दुनिया के सभी मनुष्य प्राणी तड़पने लगते हैं। कामांड का जुड़वा भाई कामदेव ने तो मंदिर लायक देवताओं को भी देवता पद से गिराकर विकारी बंदर बुद्धि बना दिया। शिर सागर से निकाल विषय सागर में धकेल दिया। दैहिक दृष्टि बनाकर कामचिता पर चढ़ाकर सृष्टि को शिवालय से वेश्यालय बना दिया। फिर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि पतित बन गई। विश्वामित्र जैसे महान तपस्वियों की तपस्या भंग कर दी। कई चतुर भक्तों ने तो राम और काम दोनों को ही अपना दोस्त बनाया। उन्हें पता ही नहीं कि एक मयान में दो तलवारें रह नहीं सकती। एक तो जीवन काम हवाले नहीं तो राम हवाले करना होगा। दोनों ही हाथों में दो दो लड्डू लेकर रुचि से खा रहे हैं। तभी तो दुनिया का ये हाल हुआ है। एक तरफ भक्ति भी जोर से कर रहे हैं और दूसरी ओर विषय सागर में गोते भी खा रहे हैं।
बिल्कुल ठीक कहा बबुलेनाथ जी। अभी ज्वालामुखी क्रोधाग्नि के बारे में बताएंगे।
जी सेनापति महोदय। क्रोधाग्नि जब जमदग्नि बन जाता है तो गुस्से की ज्वाला से कितने नगर वीरान होकर श्रापित हो जाते हैं। उसने तो हिंसा ही पर्व धर्म समझ लिया है। गले लगने वाले गला काटने पर तुले हुए हैं। क्रोध ने तो ईर्ष्या नफरत को जन्म देकर धर्मांधता कट्टरता आवाज को बढ़ावा दिया है। परिणाम कई आतंकवादी निर्माण हुए। मिसाइलों से अग्नि की वर्षा हो रही है। सभी आतंक से तंग आ गए हैं। इसने ही खतरे की घंटी बजाकर तीसरे जागतिक महायुद्ध का खतरा निर्माण किया है। जिस देश में दूध और घी की नदियां बहती थी उसी देश में खून की नदियां बहेंगी। ऐसा क्रोधाग्नि का दावा है महाराज।
अच्छा बहुत खूब बहुत खूब। ये तो हुई कामेशु क्रोधेशु की वीर गाथा। लेकिन प्रदर्शन चक्रधारी महोदय लोभराज और मोहंती के बारे में आप कौन सा चक्र चलाना चाहते हैं?
महाराज मैं प्रदर्शन चक्रधारी लोभराज के बारे में बताना चाहूँगा कि उसी के इशारे से तो अमीर गरीब का खून चूस रहे। भ्रष्टाचार व्यापार में काला बाजार इन्हीं की कृपा से ही चल रहा है। सबसे बड़ा रुपया ना बाप बड़ा ना भैया का जमाना लोभराज ने ही लाया है। चोर और पुलिस की दुश्मनी मित्रता में बदल दी। उसके पास 20 पीढ़ी का धन जमा होते हुए भी 21वीं पीढ़ी के बारे में लोग चिंतित है। आखिर मेरे 21वीं पीढ़ी का क्या होगा? अब रही बात मोहंती की। मोहंती ने तो सारे संसार को अपने वो जाल में फंसा कर रखा है। बड़े बड़े सन्यासी जंगल छोड़कर गृहस्थी बन गए हैं। मोह का तीर लगते ही मनुष्य घायल हो जाता है। एक पल रोना एक पल हंसना की नीति में सबको निपुण कर दिया है। खुद मकड़ी जाल बनाती और उसमें ही फंस जाती है। ऐसा प्रभाव है महाराज मोहंती का।
अच्छा अवगुणधारी बाबा का देह अहंकार के बारे में क्या विचार है?
मैं अवगुणधारी बाबा बड़ी नम्रता से अहंकार के बारे में बताना चाहूँगा। देहंकार ने तो सभी को मुर्दा बना दिया है। देहंकार तो अपने ही नशे में चूर है। देहाभिमान तो सभी विकारों की जड़ है। आज कोई भी खुद को छोटा समझने के लिए तैयारी ही नहीं है। सभी अपनी वास्तविक पहचान से दूर है। देहंकार ने तो सबको नकली नकाब चढ़ाकर उल्टा लटका दिया है। नकली चेहरा सामने आए असली सूरज छिपी रहे।
वाह वाह हम महावीरों की वीर गाथा सुनकर बेहद प्रसन्न हुए। सेनापति सबकी चरित्र गाथा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाए।
जो आज्ञा मारा
पितारों का प्राबल्य अर्थात हमारा प्राबल्य। जब सर्वशक्तिमान रावण की शक्ति बढ़ने लगती है तो हिंसाचार की आंधी से न जाने कितने बेगुनाह मासूम अपनी जान गवा बैठे हैं। समस्त संसार की आत्माएं खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती है। बुद्धि की भ्रष्टता से दूसरों पर अण्वस्त्र क्षेपणास्त्र डालने में जरा भी हिचकिचाते नहीं है। मुझे तो रहम आता है इनकी मूर्खता पर, लेकिन क्या करें, बेचारे मजबूर है। इसलिए महामूर्ख देखना हो तो यहाँ ही देखो और महाविद्वान भी देखना हो तो यहाँ ही देखो।
मैं दशावक्र हूँ।
परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं, क्यों अवगुंधारी बाबा?
जी बगुलेनाथ, देखते ही पता पड़ता है कि
आप दस जगह टेढ़े बाके हो।
यह विद्वान पंडितों की सभा है या चमड़ी को देखने वालों की? सोचा था सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मेरी भी वर्णी लगेगी, लेकिन यह मेरा अपमान नहीं कर रहे हो, बल्कि हंसी उड़ाकर अपना परिचय आप ही दे रहे हो। पंडित जी, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि जो तुम खुद को समझते हो वो आप है नहीं, और जो आप हो ही नहीं उसको आप दिखाना चाहते हो। क्यों बगुलेनाथ, पाखंडी के माला के मन के बड़े आए विद्वान पंडित।
तो क्या हम पंडित नहीं है?
पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जीवन मूल्य ज्ञान धारणा में चाहिए। तुम तो मियां मिट्टू हो, महाराजा रावण के मुरीद हो मुरीद। जब तक राम के मुरीद नहीं बनते तब तक सच्ची खुशी है कहां?
राम के मुरीद, वाह वाह, हम सदा हंसते खेलते और पलते रहे और उसी में आसुरी आनंद मनाते रहे, यह वरदान है हमें महाराज का।
महाराज ने तो सबका माता ही मुंडवा दिया है, तुम चोटी की बातों को क्या समझेंगे? शरीर को देखने की बजाय जो भ्रुकुटी में ज्योति बिंदु आत्मा सितारा है उसको देखने की आदत बनाओ तो तुम अवगुणधारी के बजाय गुणवंत बाबा बनोगे। और बगुलेना, तुम तो हंस राज बनोगे, राज हंस, होली हंस, सदा ज्ञान और गुण रूपी मोती चुगने वाले हंस। आत्मा के गुण शांति पवित्रता आनंद प्रेम की अनुभूति होने से गंदी दृष्टि ही निकल जाएगी, और आत्मा भाई भाई समझने से प्रेम की गंगा बहाएंगे। फिर कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाएंगे, और प्रदर्शन चक्रधारी सदा दूसरों का दर्शन करने के बजाय खुद का भी मुकड़ा दर्पण में देखा करो, वरना नारद की तरह गलती से लक्ष्मी को वरने जाएंगे। और ज्वालामुखी, ज्वालामुखी तो आत्मदर्शन से शीतल शांत स्वरूप शांति दाता बनेगा।
ये सब तुम्हारे लिए ठीक है, ऐसा तो सभी ने बनना चाहिए, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। आखिर रावण महाराज का अन्न खाते है ना?
रावण महाराज भी सुख शांति चाहते हैं, लेकिन थर्ड क्लास का टिकट निकालकर फर्स्ट क्लास में सफर करना चाहते हैं। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण तो चाहिए ना? मैं तो निर्भयता से जोर से कहूंगा कि जब तक रावण राम संप्रदाय का नहीं बनता तब तक सम्मेलन की सफलता नामुमकिन है।
बंद करो बकवास, बहुत देर से सुन रहा हूँ, दुश्मन के साथ समझौता असंभव असंभव। रावण और राम संप्रदाय का भले भले ही रास एक है राम और रावण, लेकिन संस्कार मिलन की रास तो 36 का अंक है। इस नाटक में खलनायक नायक नहीं बन सकता। दशावत, तुमने इतना दुस्साहस किया ही कैसे? सेनापति, धक्के मार कर निकाल दो इसे, नहीं तो बंदी बनाकर जेल में डाल दो।
वाह रे खासा न्याय, झूठ खंड में सच चलेगा कैसे? झूठ तो झूठ है ही, लेकिन सच की रत्ती भी नहीं। रावण, तुमने सत्यता को पवित्रता को ललकारा है, इसका नतीजा तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। आखिर राम के हाथों से ही तेरा अंत होगा, तेरे काल का अवतरण जरूर होगा। वो एक ही रास्ता तेरे लिए खुला है रावण, वो एक ही रास्ता।
परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे।
मेले का मजा ही कुछ और है।
मैया,
हे गंगा मैया, तूने मुझे दर्शन दिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मैं हर साल इस हरिद्वार में गंगा स्नान करने और पूजा करने आता हूँ। हे पतिक पावनी माँ, तुम मेरे पापों को नष्ट करने वाली हो।
उठो भक्त, हे गंगाराम, मैं आप लोगों के पाप धोते धोते अस्वच्छ बन गई हूँ। प्रदूषण से मेरा जल गंदा हो गया है। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ।
रहस्य?
जी हाँ, पानी के स्नान से भले शरीर साफ हो सकता है, लेकिन आत्मा पवित्र नहीं बनती। ईश्वर की याद से ही तुम पवित्र बन जाओगे और पावन दुनिया के मालिक बनोगे।
मैया, हम तो अभी भ्रम में पड़ गए। कोई कहते पतित पावनी गंगा है और कोई कहते पतित पावन सीताराम घट घट वासी राम देहधारी राम और कोई कहते निराकार राम।
हे वत्स, बनारस के गाय घाट पर और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर ब्रह्मा कुमारी बहने भक्तों को कई सालों से बातें समझा रही हैं कि पतित पावन सर्व का कल्याणकारी सदगति दाता निराकार राम शिव है, लेकिन मुश्किल ही कोई समझते हैं। अभी तुम खुद को आत्मा समझकर शिव को याद करने से ही पावन बनोगे, गंगा स्नान से नहीं। इसलिए मैं आपको सावधान करने आई हूँ।
अभी तो हम उलझन में पड़ गए हैं कि क्या करे और क्या नहीं करे। इतने बरसों से जो हम करते आए।
हे भक्त, ये तो समय समय की बात है। जब मैं स्वर्ग में थी तो पावन देवता मुझ में स्नान करते थे। पहाड़ों से निकले हुए पानी को जड़ी बूटी का इत्र का सुगंध आता था। जब मैं सतयुग से कलयुग तक बहते बहते आई तो कलयुग में विकारी मनुष्यों ने मेरा पानी ही गंदा कर दिया। देवताओं की मूर्तियों को भी उत्सव मनाने के बाद मेरे अंदर ही पानी में डुबोते हैं। ब्रह्मा कुमारियों का एहसान है मुझ पर, जो प्रकृति को अर्थात मुझे भी राजयोग से पवित्र किरणों द्वारा पावन बना रही है। यही ब्रह्मा वत्स, जब सत्युग में देवताएं बनेंगे तो मैं भी इनका स्नान इत्र जल से करूंगी। ये तो कर्मों की कुछ गति है मेरे भक्त।
तो आप पति पावनी नहीं हो? कहाँ है वो ब्रह्मा कुमारिया? यहाँ आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया?
भक्तों की भूल भी समयानुसार बताना होता है। जब सारी दुनिया को पावन बनना होता है, भक्ति काल के बीच में ही ऐसी बातें बताने की इस काल चक्र विनोद ही नहीं है। भक्ति पूरी होने के बाद ही भक्ति का फल ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही सदगति होती है।
तो क्या गंगा स्नान से हमारे पाप नष्ट नहीं हुए?
यह तो आप चिंतन करने से ही समझ जाएंगे कि मेरा आचरण श्रेष्ठ बनता जा रहा है या भ्रष्ट। भक्त स्नान करते हैं तो उनके पाप समुद्र में बहते बहते चले जाते हैं, फिर समुद्र की भाप से बादल उन पापों को सोख लेते हैं और वर्षा कर देते हैं, वह पाप फिर से आपके पास ही पहुंच जाते हैं। इसीलिए किए कर्मों का फल उन्हें भोगना ही पड़ता है, यह कर्म सिद्धांत है। इस अज्ञान अंधकार से दुनिया और ही पतित और दुखी बनती जा रही है।
यह रहस्य तो आज मेरी समझ में आया।
गंगाराम, ये वही ब्रह्मा कुमारी बहने हैं जो शिव सागर से निकली हुई चैतन्य ज्ञान गंगाएं हैं। कहते हैं भगीरथ ने स्वर्ग से गंगा लाई, लेकिन ब्रह्मा बाबा ही भगीरथ है जो शिव परमात्मा का भाग्यशाली रथ है। उनके मुख द्वारा परमात्मा गीता ज्ञान सुनाते हैं। ये ब्रह्मा वत्स ब्रह्मा कुमारियां ही ज्ञान गंगाएं हैं जो आत्माओं को पावन बनाने की सेवा करती हैं और स्वर्ग का एक ही रास्ता बताती हैं जिससे दुनिया ही पावन बनती है।
कितनी साफ स्वच्छ और विशाल दिल है आपके, ममता भरा हृदय, सेवा भावी जीवन, सचमुच आप माँ हो।
बहन, भक्तों की भावना प्रमाण अब तक तो प्रकृति की बेटी एक गंगा मैया दुनिया के पाप धोती थी, लेकिन अब इतनी सारी ब्रह्मा कुमारियां चैतन्य गंगाएं धरा पर अवतरित हुई है तो क्या धरती स्वर्ग नहीं बन सकती? जरूर स्वर्ग बनेगी। अब मैं यह राज भक्तों को सुनाकर पवित्र और श्रेष्ठ कर्म करके दुनिया को पावन बनाने में सच्ची रीति से सहयोग जरूर दूंगी।
तभी तो द्वापर युग से भक्त तुम्हें पतित पावनी समझकर आपकी पूजा करते हैं, तुम्हारा गायन और पूजन होता है। यह कर्मों का ही बल है, कर्म का ही फल है।
वाह बाबा वाह, शिवलीला अपरम अपार है। सिर्फ मेरी उपस्थिति ही परिस्थिति को परिवर्तित कर सकती है। वाह, अभी देखा ना, रावण को कितना पसीना छूट गया था डर के मारे, मुझे देखते अवाक हो गया। लेकिन सिर्फ आप जानते हो कि जो रावण मुझे राम समझता है वह मैं रियल राम नहीं हूँ, मैं तो राजयोगी सेवानंद हूँ। यह तो विश्व सेवा हेतु ईश्वर ने मुझे पार दिया है।
वाह, क्या इत्तफाक है। गंगा मैया, ज्ञान गंगा और प्रभु श्री राम, मैं त्रिमूर्ति का साक्षात्कार करके धन्य हो गया। आज मेरा भाग्योदय हुआ।
प्रभु,
शास्त्रों की और मनुष्यों की मतों से मैं मूझ गया हूँ। मुक्ति पाने का मुझे एक ही सहज रास्ता बताइए प्रभु।
ले लो गैस के गुब्बारे ले लो, चार रुपए में दो, चार रुपए में दो, चार रुपए में दो, चार रुपए में दो, ले लो थोड़े से ही बचे हैं, फिर नहीं मिलेंगे, चार रुपए में दो गैस के गुब्बारे, थोड़े से रह गए गैस के गुब्बारे, जल्दी लो 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 गैस के गुब्बारे, चार रुपए में दो, चार रुपए में दो।
वत्स, मनुष्य मत रूपी थैली में भरे हुए अनेक सिद्धांतों के ये गुब्बारे हैं, उनके खरीददार भी बहुत हैं, लेकिन आप सावधान रहना। न अहम ब्रह्मास्मि, न आत्मा सु परमात्मा। परमात्मा कोई डिग्री नहीं है, जो हम आत्मा उस डिग्री को प्राप्त करें। परमात्मा शिव तो हमारा पिता है, सभी भगवान हुए तो सुख शांति का वर्षा किससे प्राप्त करेंगे, और ब्रह्मलोक तो आत्मा और परमात्मा का रहने का निवास स्थान है, हमारा घर है, और घर को याद करने से पाप थोड़ी भस्म होंगे। सुख शांति का वर्षा हमें बाप से लेना है, घर की याद करने से थोड़ी मिलेगा।
यह बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन भक्ति में हमने हमसो सोहम का मंत्र पक्का किया है, उसका अर्थ भी बताइए प्रभु।
हम ही शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय सो शूद्र बनते हैं, अभी फिर से ब्राह्मण सो देवता बनना है।
यह तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई, अभी तक तो यह किसी ने बताई ही नहीं। और कई लोग कहते हैं आत्मा ज्योति योत में समाती है, वह कैसे?
ज्योति में समा गए तो उसका अस्तित्व ही नष्ट हुआ। फिर गीता में लिखा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावकः, न चैनम क्ले दयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आत्मा को अजर अमर अविनाशी और अविभाज्य कहा गया है, यह तो विरोधाभास हुआ ना। दूसरी बात, शिव हम कहने वाले भी लोगों को परमात्मा से बेमुख करते हैं। शिव के हम बच्चे हैं और वह हमारा बाप है, फिर हम ही शिव है, यह कैसे कह सकते। उनकी याद से ही तो 21 जन्म का स्वर्गीय सुख मिलता है।
अब मेरी सारी उलझन समाप्त हुई। ये भक्त न रहा गंगा का, न सीता राम का, गंगाराम बन गया बच्चा निराकार शिव राम का। अब अनेक मतों में ना भटकना, बस एक ही रास्ते को है पकड़ना, राजयोग से पावन है जरूर बनना।
वारस सेवानंद, सेवा करते रहो और खुशी का मेवा खाते रहो।
मेरे स्वामी है मेरे नाथ प्रभु।
वो मैं नहीं जो तुम समझ रही हो।
इतने बदल गए कि सीता भी आज अजनबी हो गई। मुझे माफ कर दो राम, तुमसे बिछुड़ने की सजा मुझे मिल गई।
नहीं सीते, क्या करूं भगवान, इस वेशभूषा ने तो मुझे।
राम, मृगतृष्णा के आकर्षण में मैंने धोखा खाया, उसका परिणाम मुझे शोकवाटिका जाना पड़ा और आपसे वियोगी हुई। तन से भले दूर, लेकिन रोम रोम में आपकी याद थी। जलबिन मछली की तरह याद में तड़पती थी। हे रोम रोम में बसने वाले राम, तुम जगत के स्वामी हो, मेरे मन की बात जानने वाले अंतर्यामी हो।
हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में कुछ छोड़ चुकी हूँ, आपका बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे में क्यों कुछ सोचो, नाथ मेरे में क्यों कुछ सोचो, तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, हे रोम रोम में बसने वाले राम।
सीते अब तुम्हें वियोगी से राजयोगी बनना है। हम सीता रूपी आत्माओं ने अपने मन में राम के बदले काम को बिठाया था और राम को वनवास दिया था। वैसे रामायण के हर पात्र का चरित्र आज के मानव वृत्ति का अनुमान है। कौशल्या कुशलता से भरपूर, सुमित्रा अच्छी मित्रता रखने वाली, मंथरा मत्सर करने वाली, कैकेयी किसी ने कही और कहने वाली, भरत भारत भारतीय संस्कृति, लक्ष्मण मन को लक्ष्य में स्थिर रखने वाला, शत्रुघ्न शत्रु को पराजित करने वाला, दशरथ दस दिशा, अयोध्या जहाँ युद्ध नहीं होता है,
और रावण के बारे में तो बताया ही नहीं आपने।
लंका की सरकार तो कई बार कह चुकी है, ऐसा कोई 10-30 वाला रावण इतिहास में हुआ ही नहीं है। समस्त विश्व ही समुद्र से घिरा हुआ एक टापू लंका है और 5 मनोविकारों का प्रतीक है रावण, जो सर्व मनुष्य में व्याप्त है। बहुरंगी बहुडंगी बहुरूपी छलिया धूर्त सर्वव्यापी है। वर्तमान समय कल्याणकारी पतित पावन परमात्मा शिव इन ब्रह्मा कुमारी द्वारा राजयोग सिखा रहा है, जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का एक ही रास्ता है। तुम शिव के याद में लवलीन हो जाओ तो फिर से स्वर्ग में रानी बनोगी।
अच्छा, ऐसा लग रहा है अब मुझे सच्चा रास्ता मिल गया है, मैं ज्ञान की रोशनी में आ रही हूँ।
तो आओ हम सारे विश्व में ज्ञान की, प्रेम की और पावनता की गंगा बहाएंगे। जबकि हिंसा ने अहिंसा को ललकारा है, ऐसे समय पर ये पवित्र कन्याएं बहने पवित्रता की सरिता बहाकर सबको मानवता सिखलाएंगी। इन्होंने संसार की विषय वैतरणी नदी में बहाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय सुख, प्रभु मिलन का अनुपम रस और भविष्य में अटल देवपद। जो आत्माएं पावनता की गंगा में स्नान करना चाहती है उन्हें समय का और भगवान का वरदान है। लेकिन ये कैसी विडंबना, जिन्हें हजारों वर्षों से पुकारा और वह प्रभु आया तो उनकी पुकार भी नहीं सुन सकते। वारस सेवानंद, वाह विधाता अजब है तेरी लीला। सहज भाव से इसी 10,000 ब्रह्मा कुमारियों ने पवित्रता को अपनाया है और ये दुनिया को पावन बना रही है। इसलिए
पतित पावनी मैं नहीं, ये चैतन्य ज्ञान गंगाएं हैं जो शिव की शक्ति है।
धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई,
घर घर में होती है जिनकी पूजा,
घर घर में होती है जिनकी पूजा,
चेतन में वो देवियाँ आ गई,
चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई।
भगवान श्री कृष्ण की
जय हो,
भगवान श्री कृष्ण की
जय हो,
भगवान श्री कृष्ण की
जय हो।
बड़ा आश्चर्य, मेरी आंखों पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, यह मैं क्या देख रहा हूँ? भगवान श्री कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आए? कोई इमरजेंसी काम पड़ा होगा, लेकिन हमारा सौभाग्य शायद ये हमारे भक्ति का ही फल है।
यही तो मैं समझाने आया हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ। सतयुगी सृष्टि का प्रथम महाराज कुमार तो श्री कृष्ण देवता है। भोलेनाथ शिव ने मुझे आप लोगों का भ्रम दूर करने के लिए इस साकार लोक में भेजा है। भगवान तो निराकार शिव है और श्री कृष्ण देवता है।
यह कैसे हो सकता है? तुम ही हमारे भगवान हो। अरे कोई जाओ और रथ लेके आओ। हे भगवान, आज की दुनिया में हर कोई इच्छा रखता है कि मुझे कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति हो, सखा हो, बंधु हो। अगर वह साक्षात सामने आए और कुछ भी कहे कि वह मैं नहीं हूँ तो लोग विश्वास करेंगे? हे कृष्णा, जन्म जन्म हमने तेरी भक्ति की है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तू कितनी भी झूठी कहानी बना दे खाना कि मैंने नहीं माखन खायो, लेकिन तूने ही माखन खायो, हमें पता है, समझे?
हे शिव बाबा, तूने इस राजयोगी परमानंद को किस चक्कर में डाला? लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं।
मेरे भाइयों, सतयुग के प्रिंस को क्या जरूरत पड़ी चुरा के माखन खाने की? तुमने कृष्ण पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसका नाम बदनाम किया है, क्यों पंडित जी?
शास्त्रों की बात तो सिर माथे पर।
किसने बनाए हैं ये शास्त्र? भगवान ने तो नहीं बनाए। भगवान सर्वज्ञ है और मनुष्य अल्पज्ञ है। मनुष्य गलती कर सकता है, ऐसी बातें लिखने से समाज में चोरों की संख्या बढ़ गई। कहते हैं जब श्री कृष्ण चोर था, हम तो फिर साधारण मनुष्य हैं। बस कैदी और कैद खाने की संख्या बढ़ गई।
अच्छा अच्छा, और आपकी वह 16108 रानियां कहां गई?
पंडित जी, मेरा तो सिर्फ राधे के साथ स्वयंवर हुआ था, बाद में उसका नाम श्री लक्ष्मी हुआ। वैसे ही मेरा भी नाम स्वयंवर के पश्चात श्री कृष्ण से श्री नारायण हुआ। यह 16108 रानियां अर्थात जो महाराज कुमार श्री कृष्ण के रॉयल घराने की नजदीकी प्रजा और मित्र संबंधी आदि थे। तुमने उल्टी सुल्टी बातें शास्त्रों में लिखने से लोगों ने दूसरी शादी तीसरी शादी करने में कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी। बीबी मरती है तो कहते बैचलर अगेन, दूसरी शादी करते हैं तो कहते मैरिड अगेन। बस बीए एमए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सुशिक्षित बनते जा रहे हैं, लेकिन सुसंस्कृत नहीं। कहते हैं कृष्ण की इतनी सारी रानियां थी, हमने दो चार रानियां बनाई तो क्या बड़ी बात है।
बात तो बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण जी, मैं समाज सेविका एवं पत्रकार भी हूँ।
अच्छा, तो मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी?
भागवत में हमने सुना है गोपिकाएं जमुना के कंठे पर स्नान के लिए जाती थी तो आप उनके वस्त्र चुराते थे।
मुझ पर माखन चोरी का आरोप तो पहले से ही है, अब वस्त्र हरण का आरोप बाकी था।
वस्त्र हरण नहीं, गोपिकाओं के वस्त्र छुपाते थे और पेड़ पर बैठकर आराम से उनकी अवस्था को निहारते थे।
हे भगवान, कहाँ की बात कहाँ ले गए।
बात का बतंगड़ बनाने में ये पत्रकार भी कम नहीं है।
जी सुना आपने मैंने क्या कहा?
हाँ हाँ बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। हे प्रभु, आपने हमें सेवा का अच्छा मौका दिया।
पत्रकार जी, मैं जो सुना रहा हूँ ध्यान से सुनना, वह कल के न्यूज़पेपर में छपना चाहिए। परमात्मा शिव के जो राजयोगी बच्चे हैं, वह जब शिव से योग लगाते हैं तो देह का भान भूल जाते हैं। देह को वस्त्र भी कहते हैं। गीता पढ़ी है ना आपने?
थोड़ी थोड़ी।
अच्छा, जब तक देह भान नहीं भूलते हैं तब तक अतीन्द्रिय सुख का रस ईश्वर से नहीं ले सकते। इसीलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। हम आत्मा रूपी गोप गोपिकाएं हैं और गोपी वल्लभ शिव पिता है। उसकी याद में लवलीन होते हैं तो वह देह रूपी भान निकल जाता है। इसको ही वस्त्र चुराना शास्त्र में कह दिया है।
इसीलिए अन्य लोगों को यह मौका मिल गया है कि आपका भगवान तो माखन चोर है, गोपिकाओं के वस्त्र चुराता है और 16108 रानियां भी करता है। ऐसी बातों से ही लोग अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं और कृष्ण के ऊपर व्यभिचार का कलंक लगाने से समाज मूल्यनिष्ठ बनने के बजाय मूल्यहीनता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ऐसा कार्य करेगा मीडिया जो लाएगा गोल्डन इंडिया।
वाह वाह, क्या बात कही।
कल के अखबार में बड़ा शीर्षक रहेगा, मूल्यनिष्ठ समाज से मूल्यहीनता की ओर बढ़ते कदम क्यों। श्री कृष्ण जी, एक और आखिरी सवाल पूछती हूँ। कृष्ण ने असुरों के गले काटे तो क्या वह हिंसा भी करता था।
श्री कृष्ण बनने के पहले जन्म में उन्होंने अपने अंदर की सारी बुराइयाँ, विकार, कमजोरियाँ सुदर्शन करने से निकाल दी। अपने अंदर के विकार रूपी राक्षसों का खात्मा किया। अब बताओ, यह हिंसा हुई।
कृष्ण जी, एक और आखिरी सवाल। हमने तो सुना है आपने पांडवों को युद्ध क्षेत्र पर द्वापर युग में गीता ज्ञान सुनाया।
भला युद्ध क्षेत्र पर ज्ञान सुनने की किसकी मनस्थिति रहती है। तब तक शत्रु पक्ष शांति धारण करेगा। बात वर्तमान समय की है। जो शिव परमात्मा अभी हम बच्चों को गीता ज्ञान देकर देवता बना रहे हैं, द्वापर में सृष्टि का पतित बनना शुरू होता है। वहाँ कृष्ण जैसे देवता पतित दुनिया में पैर भी नहीं रख सकते। और इस श्रेष्ठ ज्ञान से तो द्वापर के बाद सतयुग आना चाहिए था, लेकिन द्वापर के बाद तो कलयुग ही आया। इसका मतलब कृष्ण ने द्वापर युग में ज्ञान नहीं सुनाया। शिव बाबा यह ज्ञान संगम युग में अभी सुना रहे हैं। और कृष्ण तो बच्चा है और शिव पिता है। बाप के बदले बच्चे का नाम गीता में डालने से गीता खंडित हुई और अनेक धर्मों की स्थापना हुई। सब सत्यों में सत्य महान शिव है गीता का भगवान।
आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम भी यह शिव का ज्ञान सुनकर पुजारी से पूज्य देवता बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे।
ऐसी लाएंगे हम रूहानी क्रांति जो मिटे सबकी भ्रांति।
अभी आप जल्दी जल्दी करो, क्योंकि अब बेहद का नाटक जो 5000 वर्षों से चल रहा है वह पूरा होता है। सभी आत्माओं को घर जाने का समय है। बिगड़ी को बनाने वाला जो सत्यम शिवम सुंदरम है उसका आदेश है, पवित्र बनो, राजयोगी बनो। और संदेश है, अब स्वदेश ब्रह्मलोक शांति धाम में लौटना है। राजयोग का यह एक ही रास्ता ईश्वर के पास पहुंचता है। आप महानुभावों की सेवा करने का भाग्य इस परमानंद को मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में भक्तों की सेवा करने जाना है।
राधा,
सुना दे मुझे वो मुरली की तान।
ओ मैं नहीं जो तुम समझती हो।
क्या मैंने गलत समझा? मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है?
हाँ राधे, मैं तो विश्व सेवाधारी हूँ। मुझे कई आत्माओं की सेवा कर परमात्मा से उनके बुद्धि का योग लगाकर ज्ञानामृत बांटना है और प्यार की वर्षा करनी है। मैं किसी आत्मा के बंधन में नहीं बंधना चाहता।
कान्हा, मेरा प्यार तो आत्मिक है, निस्वार्थ है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक रूहानियत भरी स्नेह की दृष्टि से ही मैं भगवान के प्यार में खो जाना चाहती हूँ।
भगवान तो सभी आत्माओं का पिता शिव है, रचयिता है, और कृष्ण उसकी रचना है। रचना की याद करने से अविनाशी सुख शांति का वर्षा नहीं मिलता है। रचयिता प्यार के सागर से प्रीत जुटाकर उसे याद करो तो हम स्वर्ग में रास लीला खेलेंगे।
स्वर्ग की बातों में हमारा दिल नहीं बहलाओ। बस मेरा मनमोहन तो एक कान्हा, दूसरे का विचार भी अब मन में नहीं लाना।
लेकिन ऐसा मनमोहन बनाने वाला तो शिव बाबा है, उसकी याद से ही हम उच्च पद की प्राप्ति कर सकते हैं। हे भगवान, इनकी श्रद्धा प्यार देखकर तो मैं हैरान हो गया। मैं राजयोगी परमानंद आ रहा हूँ आपके पास।
अब अकेले नहीं, हम सभी चलते हैं आपके साथ जहाँ शिव का कार्य चल रहा है।
तो चलो।
जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा।
जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा।
मैं राजहंस हूँ, हंसराज, होली हंस। मेरा भूतकाल पांच विकारों के भूतों के वश था। दूसरों की ग्लानी करना, गंध खाना और उसी में आसुरी आनंद मनाना रावण का श्राप था, जिसे गलती से वरदान समझ बैठे। लेकिन दशावक्र की वाणी तो हमारे लिए सच्चा वरदान साबित हुई। राजयोग सीखने से मेरे अंदर परिवर्तन हुआ, बगुले नाग से राजहंस बन गया और हंस की तरह ज्ञान गुण रूपी मोती चुगने लगा।
मैं ज्वालामुखी था, लेकिन आज गुस्से की ज्वाला राजयोग की अग्नि से ठंडी हो गई और मैं ज्वालामुखी से शांत शीतल शांति दाता बन गया।
रावण के चक्कर में आने से मैं दूसरों के दोषी देखता था, जिससे परदर्शन चक्रधारी बना था। लेकिन आज स्वचिंतन से, स्वदर्शन से स्वदर्शन चक्रधारी बन गया। ए बंदो, सारे जहान की तमाम रूहे जब कब्र दाखिल होती है, तब रूहे आला अर्शये आजम से आकर रूहों को जगाते हैं और सबके कारनामों का, नेकी और बदी का हिसाब लेते हैं। इसलिए अभी समय जागने का है, क्योंकि सारे दुनिया का ही जनाजा उठने वाला है। कयामत हमारे सिर पर खड़ी है। अब तो हुसैन अर्थात रूहे आला अल्लाह को पहचानो। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। हजरत आदम के जिस्म पर सवार होकर राह ए निजात अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता वह दिखा रहा है। खुद को रूह तथा खुदा को नूर समझकर याद करने से ही बहिष्ट के मालिक बनोगे। नूरे इलाही को पहचान कर उसके फरमान पर चलना ही सच्ची इबादत है, पूजा है। वही नूर है, ओंकार है, लाइट है, सर्वधर्म मान्य परम ज्योति, सबका मालिक एक है। एक ही शिव बाबा की हम संतान, आपस में भाई भाई है। सर्वधर्मानि परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि माशुच।
क्या संयोग है, राम और कृष्ण दोनों एक साथ। कोई देखेंगे तो बड़े अचंभे में पड़ेंगे। क्यों हंसराज, शांतिलाल, क्यों सुदर्शन चक्रधारी।
लेकिन दोनों की जोड़ी खूब जम गई, जिससे हमारा उद्धार हुआ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन जरूर होगा, यही आपके सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
हम तो निमित्त मात्र है, यह तो ईश्वरीय ज्ञान का और सहज राजयोग का चमत्कार है। अच्छा मीठे मीठे सेवानंद भैया, कैसा रहा आपका सेवा का सफर?
बड़ा ही सुखदायी सफर रहा। सचमुच रूहानी सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी का मेवा है। अभी खाओ और जन्म जन्म माला माल हो जाओ। महाराष्ट्र की सेवा के पूरे हुए 50 साल, अब तो चले हम फरिश्तों की चाल। सेवा के सफर में सीता जैसी आत्माओं को शोक वाटिका से कलयुगी दुख धाम से छुड़ाने का मुझे मौका मिला।
और हाँ, मुझे भी राधे जैसी कृष्ण के स्नेह में डूबी हुई अपार श्रद्धावान आत्माएं मिली। उनके बुद्धि का तार शिव बाबा से जोड़ने का डायमंड चांस मुझे मिला, और गीता का भगवान भी प्रसिद्ध होने लगा। रचना और रचयिता का भेद खुल रहा है। चारों तरफ से देश और विदेश से नगाड़े बज रहे हैं, जागो जागो भारत में भगवान आए हैं।
मैंने भी लोगों को समझाया, यह कोई धर्म का प्रचार नहीं लेकिन ईश्वरीय ज्ञान का प्रसार है। और परमात्मा शिव ने हमें बताया, यह सृष्टि चक्र का सिद्धांत है। जब दुनिया में कंस होता है तो वहाँ कृष्ण नहीं होता है। एक तो रहेंगी कंसपुरी, नहीं तो कृष्णपुरी। देवताएं पति सृष्टि पर पाव भी नहीं रख सकते। जब राम होता है
तो वहाँ रावण नहीं होता है। तभी तो राम राज्य में सुख शांति पवित्रता होती है।
बिल्कुल ठीक, सदा काल के लिए एक ही राज्य नहीं चलता है। परिवर्तनशीलता सृष्टि का नियम है।
वाह, इसका फैसला हम आज ही कर देते हैं। एक तो रहेगा रावण राज, नहीं तो राम राज।
रावण महाराज की
जय हो।
रावण महाराज की
जय हो।
रावण राज
जिंदाबाद।
रावण राज
जिंदाबाद।
रावण राज
मुर्दाबाद।
रावण राज
मुर्दाबाद।
राम राज
जिंदाबाद।
राम राज
जिंदाबाद।
ओहो, यह मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे अपने हुए पराए, रक्षक ही रक्षक बन गए।
घबराओ नहीं सेनापति, भले ही हमारे राज्य के महाराजियों ने हमें धोखा दिया है, हमारे साथ छल किया है इन छलियों ने, लेकिन इनके लिए हम अकेले ही काफी है। युद्ध करना बच्चों का खेल थोड़े ही है, इनको तो मैं अपनी चुटकी में ही नसल मसल कर रख दूंगा। ये क्रोध का भाव,
क्रोध को भस्म करने के लिए ये प्रेम स्वरूप का बाण,
ये लोक विकार का बाण,
ये संतुष्टता का बाण, ये आत्म अभिमानी स्थिति के बाण से देहंकार नष्ट,
ये कामदेव का कुदृष्टि का बाण,
पवित्रता के बाण से गंदी दृष्टि का खात्मा हुआ।
सेवानंद, मुझे तो ये रावण की जगह कंस दिखाई दे रहा है। और हाँ, यह अकासुर बकासुर जरासंधी कहाँ से आकर टपक पड़े? ये महाभारत के पात्र यहाँ कैसे?
राजयोगी परमानंद, ये नहीं भूलना भैया कि रामायण और महाभारत का समय यही है। कंस जरासंधी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि आसुरी दुष्ट शक्ति है। आसुरी वृत्ति के खिलाफ हमारा आंतरिक युद्ध है।
तो लो, ये स्वदर्शन चक्र से हम इन आसुरी वृत्तियों के गले काट देते हैं। यही राजयोगियों की अकासुर बकासुर पर जय है।
बहुत अच्छा, लेकिन इतने बाणों का अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने के बावजूद रावण खत्म ही नहीं हो रहा है। ये तो मरता ही नहीं है, फिर से जिंदा कैसे हो रहा है?
जब तक मेरे पास ज्ञान की संजीवनी बूटी है तब तक मैं अमर हूँ, मृत्युंजय हूँ, मुझे शिव का वरदान है, मुझे कोई नहीं मार सकता।
अच्छा अब तेरा खेल खत्म होता है रावण, ये आखिरी बार गुटी के साथ तेरी भी छुट्टी।
बाणों से मेरा अंग छलनी छलनी हो रहा है, जैसे कोई मेरी खाल खींच रहा हो। मेरे प्राण पखेरु उड़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरा वादा है मैं 2500 बरस बाद द्वापर युग के शुरू में फिर से अवश्य आऊंगा। फिलहाल मुझे मुक्ति का एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, अलविदा अलविदा। हे शिव राम, हे राम, हे राम।
इस संसार में ना कोई कंस होगा, ना कोई अकासुर बकासुर होगा,
ना रावण होगा, खुशी में झूमता हुआ स्वर्ग मन भावन होगा।
अब तो जल्द ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं, आप सभी चलोगे ना स्वर्ग?
हमारा बाबा आया है,
हथेली पर बहिष्ट लाया है।
हमारा बाबा आया है,
हथेली पर बहिष्ट लाया है।
शिव का झंडा ऊंच महान,
महाशिवरात्रि का पर्व महान।
शिव का झंडा ऊंच महान,
महाशिवरात्रि का पर्व महान।
हमारा बाबा
शिव बाबा,
मेरा बाबा
सत्ता बाबा।
हमारा बाबा
शिव बाबा,
मेरा बाबा
सत्ता बाबा।
आओ मेरे लाडले सेवादारी बच्चों, राजयोगी सेवानंद और परमानंद, आपने मनुष्य आत्माओं की भूल सुधारने की अच्छी सेवा की। सहज राजयोग का एक ही रास्ता बताकर उनका जीवन सुख शांति से भरपूर किया, इसलिए स्वर्गीय सुख तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये लो स्वर्ग की बादशाही और साथ में इस सीजन का इनाम, चांदी का ब्रह्मा बाप अब तुम्हारे नाम। खूब नाचो गाओ रास करो, खुशी की मिठाई खाओ और खिलाओ।
देखा भाई बहनों ने अपनी कलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया है। अब मंच पर आदरणीय संतोष दीदी जी, आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी आए हैं और रावण भी उनके चरणों में झुका है। आप सभी देख रहे हैं योग की शक्ति से किस प्रकार से रावण का राज्य खत्म हो जाता है और स्वर्णिम संसार की स्थापना होती है। तो यह एक ही रास्ता है, इस एक ही रास्ता का पात्र परिचय है सेनापति बी के पंकज पंडित जी, भाग्यश्री बगुलेनाथ आशीर्वाद ज्वालामुखी साहेबराव भाई, प्रदर्शन चक्रधारी राजेश भाई, अवगुणधारी बाबा प्रवीण भाई, दशावक्र लक्ष्मण भाई, गंगाराम नारायण भाई, गंगा दीपा बहन, ब्रह्मा कुमारी अर्चना बहन, पत्रकार स्नेहा बहन, राधा संगम बहन, सीता स्नेहल बहन और ब्रह्मा बाबा मनसी भाई, राजयोगी सेवानंद बीके पंकज, राजयोगी परमानंद श्री कृष्ण के रूप में प्रयोग और रावण की प्रमुख भूमिका निभाई गणेय भाई, और इस नाटक को सफल बनाने के लिए ध्वनि संकलन रवि भाई एंड साथी, रंगमंच व्यवस्था वल्लभ भाई, प्रकाश योजना तारा भाई और ताराचंद भाई और सभी भाई बहने, नृत्य निर्देशिका बीके सीमा बहन, रंगभूषा बीके गुलाब भाई, संचालन ब्रह्मा कुमारी सीता बहन अमरावती, लेखक तथा दिग्दर्शक ब्रह्मा कुमार भगवान भाई अमरावती। इन सभी मंच पर उपस्थित एक्ट्रेस का हम सभी भाई बहने दिल से अपने कर्तव्य ध्वनि के साथ धन्यवाद एवं स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।